लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, शक या संदेह, जिसे हम अविश्वास की संज्ञा भी देते हैं, हम मानवीय जीवन का एक अंग है। हम में से हर कोई अपने जीवन के इस दौर से होकर गुजरता है। हम निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में संदेह और अविश्वास के घेरे में पड़ जाते हैं। दूसरों में विश्वास की बातें तो दूर, कभी कभी हम स्वयं अपने ऊपर विश्वास करने में अपने को असक्षम पाते हैं। हमें संदेह होता है कि हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। अपने में संदेह और अविश्वास के कारण हम बहुत बार किसी कार्य को करने हेतु पहल नहीं करते हैं। संदेह और विश्वास की कमी हमें कई बार अपने में दब्बू बनाकर रख देती है। श्रोताओ, पास्का के दूसरे रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु हमें पुनर्जीवित मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने का आह्वान देता है। यह हमें अपने संदेह और शंका की भावना का परित्याग करने को कहता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने हृदय की जांच करें और स्वयं से पूछें कि हमारे अविश्वास का मुख्य कारण क्या है। हमें संदेह और शंका क्यों होती है? हम कैसे अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं?
उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ईसा के आने के समय बारहों में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिसे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो।
श्रोताओं, सुसमाचार के जीवनदायी वचन हमें पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त की ज्योति से आलोकित करे जिससे हम अपने विश्वास के छोटे बीज को अपने में विकसित कर सकें जो हमें अपने जीवन के सभी कार्यों को आत्मविश्वास में सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगा। श्रोताओं, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय के विश्वास का एक ठोस और अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। विश्वास हमारे लिए जीवन में संपूर्ण समर्पण की बात व्यक्त करता है। यह तन, मन और धन सभी रूपों में व्यक्ति का अपने विश्वास करने वाले पर समर्पण है जिसे हम एक संतान का अपने माता पिता पर विश्वास के रूप में देख सकते हैं। यह दिलों के असल संबंध को व्यक्त करता है जहां एक व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अपने को और अपने जीवन की सारी चीजों को किसी के लिए अर्पित कर देता है। ऐसे विश्वास में हम व्यक्ति के बीच एक शरीर और एक मन हृदय होने की बात कहते हैं। श्रोताओं, आज के पहले पाठ में हम विश्वासियों के मध्य एक ऐसा ही संबंध पाते हैं। यह हमें उनका एक दूसरे के संग अति गहराई से जुड़े रहने की बात व्यक्त करता है। ऐसे संबंध में वे एक दूसरे की चिंता करते और एक दूसरे की सारी जरूरतों का ख्याल करते हैं। वे अपनी संपत्ति को बिक्री कर उसे मिले धन को शिष्यों के पास जमा करते जिससे जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अतः उनके बीच ऐसा कोई नहीं था जो अभाव की स्थिति में जीवन यापन करता हो। श्रोताओं, प्रथम ख्रिस्तीय समुदाय में इस विश्वास का कारण और कोई नहीं बल्कि स्वयं पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त थे जिन्होंने उन्हें एकता और प्रेम में पिरोकर रखा। यह उनका विश्वास था कि मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त जो उनके साथ थे, जिन्होंने दुख उठाया, जो क्रूस पर मर गए और दफनाए गए, उनके लिए जी उठे हैं। इस तरह जीवित ईश्वर पर उनका अटूट विश्वास उन्हें दूसरों के लिए जीवन का कारण बनने को प्रेरित करता है। निसंदेह समुदाय में उनके कार्य पुनर्जीवित प्रभु के प्रेम से प्रेरित होते हैं क्योंकि प्रभु का दर्शन उन्हें एकता और भाईचारे के संबंध में बांधकर रखता है। श्रोताओं, प्रेरित संत योहन के प्रथम पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए पहले पाठ को सत्यापित करता है। वह जो यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता है प्रेम का स्रोत बनता है क्योंकि ईश्वर प्रेम से हमारे लिए उत्पन्न होते और प्रेम के कारण हमारे बीच आते हैं। अतः पिता के प्रेम से उत्पन्न प्रभु अपने विश्वास करने वालों को स्वयं अपने प्रेम की सौगात प्रदान करते हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने वाला इस संसार पर विजयी होता है क्योंकि प्रेम में जीवन देने वाले ईश्वर ने हमारे लिए सारी चीजों में विजयी प्राप्त की है। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने थॉमस के अविश्वास की चर्चा सुनी। उनका यह अविश्वास एक कटु अनुभव के कारण था जहां उन्होंने अपने गुरुवर को बेमौत मरते हुए देखा था। हमारे जीवन में अविश्वास का कारण यदि हम देखें तो यह हमारे कटु अनुभवों के कारण होता है। एक व्यक्ति जिसने अपने में असफलता का अनुभव किया है स्वतः ही अपनी असफलता से डरा और घबराया रहता है। अतः नकारात्मक जीवन के अनुभव हमारे आत्मविश्वास को हिलाकर रख देते हैं। थॉमस के संग हम इसी नकारात्मकता को पाते हैं जो अन्य दूसरे शिष्यों की बातों को स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से यीशु के साथ हुई घटित घटनाओं को देखा था। थॉमस की ये बातें कि जब तक मैं उन्हें ना देखूं और उनकी बगल में अपनी अंगुली ना रखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, किसी भी साधारण मनुष्य के लिए, हम सबों के लिए भी लागू हो सकती है यदि हम किसी को इतनी क्रूरता में मरते देखेंगे। श्रोताओं, हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। वे हमारे विश्वास की जड़ों को हिलाकर रख देती हैं। आज कितने ही भाई बहने हैं जो दुखद घटनाओं के कारण ईश्वर पर अपने विश्वास को खो चुके हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में आते और हमें अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं कि वे सदैव हमारे साथ हैं। वे हमें अपने घावों को दिखलाते और विश्वासी बनने का आह्वान करते हैं। क्या हम अपने विश्वास में यीशु की ओर आते और उन्हें थॉमस की भांति मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर कहते हैं? आइए हम विश्वास की कृपा मांगें, जिससे हम उन पर अपना सब कुछ निछावर कर सकें, जो हमें कमजोरियों में मजबूत करती और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति से भर देते हैं।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को सिराकुसा के संत अंजेला मेरिची फाउंडेशन के 170 सदस्यों से वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की। सिराकुसा के संत अंजेला मेरिची फाउंडेशन के सदस्य अपने फाउंडेशन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फाउंडेशन मोनसिनियर गोजो से प्रेरित होकर सबसे कमजोर लोगों की सेवा करता है। संत पापा ने फाउंडेशन के इतिहास पर गौर किया, जो उदारता पूर्वक कई केंद्रों का संचालन करता है। फाउंडेशन की स्थापना की नींव उस घटना को मानी जाती है जब 1953 में सिराकुसा शहर के इयानुसो दंपति के घर में माता मरियम की एक छोटी तस्वीर से आंसू बह रहे थे। संत पापा ने कहा, ये आंसू अपने बच्चों की पीड़ा एवं दर्द के लिए हमारी स्वर्ग की माँ मरियम के हैं। ये आंसू हमें हमारे प्रति ईश्वर की करुणा के बारे बतलाते हैं। साथ ही कुंवारी मरियम के आंसुओं के माध्यम से प्रभु हमारे दिलों को पिघलाना चाहते हैं, जो कभी कभी उदासीनता में सूख जाते हैं और स्वार्थ में कठोर हो जाते हैं। वे हमारी अंतरात्मा को संवेदनशील बनाना चाहते हैं, ताकि हम अपने भाई बहनों के दर्द को समझ सकें। पोप ने कहा कि यही उनके इतिहास की समृद्धि है, जिससे उन्हें नहीं खोना चाहिए। पोप ने सदस्यों को बतलाया कि सुसमाचार ही उनके मूल्यवान सेवा का स्रोत है। उन्होंने कहा, सुसमाचार स्रोत है क्योंकि यीशु पहले व्यक्ति हैं जो उन लोगों के कष्टों से द्रवित हुए थे जिनसे वे मिले थे, और जैसा कि सुसमाचार लेखक संत योहन याद करते हैं, वे अपने मित्र लाजरुस की मृत्यु से गहराई से प्रभावित हुए थे। संत पापा ने कहा कि जब आप दर्द में पड़े लोगों का साथ देने के लिए काम करते हैं, जैसा प्रभु ने अपने शिष्यों को भूखी थकी हुई और पीड़ित भीड़ के लिए करने का आदेश दिया था, तब आप सुसमाचार में यीशु की करुणा का एक जीवित प्रमाण है। वास्तव में यीशु हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसियों के प्रति प्रेम को अलग नहीं करने के लिए कहते हैं। संत पापा ने फाउंडेशन के सदस्यों को अपनी यात्रा जारी रखने का प्रोत्साहन दिया। कल दिव्य करुणा रविवार है, आइए हम अपने प्रति ईश्वर के प्रेम पर संदेह न करें, बल्कि विश्वास एवं दृढ़ता के साथ अपने जीवन और दुनिया को प्रभु को सौंप दें। आइए हम उनसे उन राष्ट्रों के लिए न्यायपूर्ण शांति हेतु प्रार्थना करें जो युद्ध में शहीद हुए हैं। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों को संबोधित कर दिव्य करुणा रविवार के पहले शनिवार को अपने एक संदेश में कही। इटालियन रेड क्रॉस की स्थापना की 160वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वयंसेवकों से मुलाकात करते हुए पोप फ्रांसिस ने मानव व्यक्ति को केंद्र में रखने की आवश्यकता की याद दिलाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हर जगह मानव अधिकारों की गारंटी देने के नियम की मांग की। शनिवार को संत पापा फ्रांसिस ने रेड क्रॉस के 6000 स्वयंसेवकों से मुलाकात की। इटालियन रेड क्रॉस की स्थापना मिलान में 15 जून 1864 को युद्ध से पीड़ित एवं बीमार लोगों की मदद के लिए हुई थी। आज भी युद्ध के कारण तबाही और पीड़ा का सामना करते हुए राष्ट्रीयता, सामाजिक वर्ग, धर्म या राजनीतिक विचारों के भेदभाव के बिना यह मानवता का एक महान कार्य है जो सहायता और देखभाल के ठोस चिन्ह एवं कार्य में तब्दील हो गई है।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 6 अप्रैल को धर्म प्रांतीय पुरोहित फादर सिमियानो पुरिफिकाओ फर्नांडिस को गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। अब तक वे संत पीयूस 10वें पास्टोरल संस्थान के निदेशक रहे हैं। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष सिमियाओ फर्नांडिस का जन्म 21 दिसंबर 1967 को गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के चंदौर में हुआ था। उन्होंने राचेल के पेट्रियाकल सेमिनरी में दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र की पढ़ाई की और 10 मई 1993 को गोवा और दमन महाधर्म प्रांत के लिए उनका पुरोहिताभिषेक किया गया। उन्होंने सहायक पल्ली पुरोहित और पल्ली पुरोहित के रूप में अनेक पल्लियों में अपनी सेवा दी। रोम में पोंटिफिकल बाइबल इंस्टीट्यूट से पवित्र धर्म ग्रंथ में लाइसेंस और पुणे में ज्ञानदीप विद्यापीठ में बाइबल धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की है। और संत पापा फ्रांसिस ने रोम धर्म प्रांत के पल्लियों की अपनी नियमित यात्रा फिर से शुरू की है। कल शाम लगभग 4 बजे संत हेनरी पल्ली का दौरा किया और 35 पुरोहितों से मुलाकात की। संत पापा फ्रांसिस अपनी कार से पल्ली पहुँचे। वहाँ धर्माध्यक्ष दानियल सालेरा, पल्ली पुरोहित फादर मसिमिलियानो मेम्मा और भिखारियट के 35 पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। संत पापा ने धर्म प्रांत के उस क्षेत्र में आने वाले प्रेरितिक मुद्दों पर पुरोहितों के साथ बंद कमरे में बातचीत की। पुरोहितों से मुलाकात करने के बाद पल्ली से बाहर निकलते समय लगभग 50 स्थानीय निवासियों ने संत पापा का स्वागत किया, जिनमें मुख्य रूप से दादा दादी, महिलाएं और स्कूली बच्चों के साथ साथ पल्ली में काम करने वाली कई धर्म बहनें भी शामिल थीं। उधर 2 दिनों के लिए रोम में लुम्सा विश्वविद्यालय के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सरोगेसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए हुए हैं। सम्मेलन का आयोजन उस समूह द्वारा किया गया है जिसने 2023 में कासाब्लांका घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें परम धर्मपीठ भाग ले रहा है। 3 मार्च 2023 को न्यायविदों, चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों सहित 75 राष्ट्रीयताओं के 100 विशेषज्ञों ने मोरक्को महानगर के कासाब्लांका घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सरोगेसी को समाप्त करने वाली एक संधि की स्थापना का आह्वान किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य सरोगेसी द्वारा प्रस्तुत नैतिक सीमाओं को उजागर करना है और इसके प्रोत्साहकों द्वारा तेजी से बढ़ते व्यवसाय के प्रति सचेत करना भी है। सरोगेसी के खिलाफ इस लड़ाई को खुद संत पापा से अनुकूल प्रतिक्रिया मिली है, जिन्होंने गुरुवार दोपहर को निजी तौर पर नेटवर्क के कुछ सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने अपने मेहमानों के सामने सरोगेसी बाजार की निंदा की। उधर इसराइल का कहना है कि वह गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 3 क्रॉसिंग खोलेगा और उनका विस्तार करेगा। समझा जाता है कि यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इसराइली प्रधानमंत्री के साथ एक फोन कॉल के दौरान किए गए एक विशिष्ट अनुरोध के जवाब में है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।